हमें सुनाएंगी
क्योंकि
ये है नानी की कहानियाँ क्योंकि ये है नानी की कहानियाँ।
नानी हम आ गए।
आओ मेरे बच्चों आओ।
आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाने वाली है?
आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी।
मगर क्यों नहीं?
अरे अरे उदास मत हो, मैं तो मजाक कर रही थी। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर लड़की की कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम था हुस्न बानो। तो शुरू करें?
हाँ नानी।
तो बच्चों बहुत समय पहले की बात है, किसी शहर में एक सौदागर रहता था जो कारोबार ना होने के कारण उन दिनों बहुत मुश्किल की जिंदगी जी रहा था। उसकी चार बेटियां थी, शकीला बानो, सहर बानो, कमर बानो और सबसे छोटी हुस्न बानो। और पता है हुस्न बानो सारी बहनों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत और नेक थी, जबकि तीनों बड़ी बहनें बदसूरत, बदतमीज, जाहिल और कामचोर थी। और अपने सारे काम जैसे चाय बनवाना, नाश्ता बनाना, कपड़े धोना, खाना बनाना अपनी छोटी बहन बेचारी हुस्न बानो से करवाती थी। एक दिन जब हुस्न बानो अपने रोजमर्रा के काम में बिजी थी, तब सौदागर खुशी से हंसता हुआ घर में पहुंचा। सौदागर खुशी से नाच रहा था और सिर उठा के गाने गा रहा था। जब सौदागर की लड़कियों ने अपने अब्बा को नाचते गाते देखा, तब वो भी उसके साथ नाचने लगी। चारों की चारों बहनें बहुत खूबसूरत डांस कर रही थी और खास करके हुस्न बानो। हुस्न बानो ने अपने अब्बा के दोनों हाथ पकड़े और हवा में उठाते उठाते उन्हें भी बहुत नचाया और खुद भी खूब ठुमकने लगी। जब सब थक कर बैठ गए तो सभी बहनों ने अब्बा को घेर कर उन्होंने इतनी खुशी का कारण पूछा। तब सौदागर ने अपनी बेटियों को बताया कि उन्हें अभी अभी पता चला है कि उनका जहाज जो समंदर में गायब हो गया था वो मिल गया है और बंदरगाह पर आने वाला है। ये सुन सभी बहनें बहुत खुश हुई। सौदागर इतना खुश था कि वो अपनी सभी बेटियों के लिए लौटते समय कुछ ना कुछ तोहफा लाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी सभी बेटियों से पूछा कि उन्हें क्या क्या चाहिए। तब शकीला बानो ने अब्बू से कीमती हीरो का हार बुलवाया, सहर बानो ने कीमती कड़े, कमर बानो ने खूबसूरत चूड़ियां बुलवाई और जब हुस्न बानो से सौदागर ने अपनी पसंद बताने को कहा तो उसने कहा, अब्बू हमें आपकी सलामती के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए, मगर आप फिर भी अगर हमारे लिए कुछ लाना चाहते हो तो सफेद गुलाब का फूल ले आइए। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुन सौदागर की आंखों में आंसू भर आए। सभी बेटियों की ख्वाहिशों के जानने के बाद सौदागर सीधा बंदरगाह की तरफ रवाना हो गए और एक लंबे सफर के बाद सौदागर बंदरगाह पर पहुंच गया। हर रोज की तरह जहाज आते और जाते रहे, मगर वो जहाज नहीं आया जिस पर सौदागर का सामान था। सौदागर को रोज इस तरह पूरे पूरे दिन अपने जहाज का इंतजार करते हुए देखकर जहाज के कप्तान ने दिल पर पत्थर रखकर सच बता ही दिया कि उनका वो जहाज जिस पर उनका सामान आने वाला था समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिया गया था और लुटेरों ने लूट के बाद उनका जहाज जला भी दिया था। बेचारे सौदागर की सारी उम्मीदें खाक में मिल गई। अपनी किस्मत को कोसता हुआ आखिरकार वो अपने शहर की ओर चल पड़ा। रात गुजारने के लिए वो किसी ठिकाने की तलाश कर ही रहा था कि एक जबरदस्त तूफान आया और सौदागर उस तूफान की चपेट में आ गया। जब सौदागर को होश आया तब वो एक बड़े से महल के सामने था और सौदागर उस महल के अंदर गया। तब उसने देखा कि उस महल में तो कोई है ही नहीं, और एक बड़ी सी टेबल पर गरम गरम खाना रखा हुआ था।
खाने में क्या क्या था नानी?
बहुत से रसगुल्ले, गुलाब जामुन, आइसक्रीम और बहुत सारी चॉकलेट।
वाव नानी, सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया।
और यही हाल सौदागर का भी था। उसने बहुत आवाजें लगाई ताकि कोई बाहर आए, मगर कोई ना आया। तब सौदागर बिना कुछ सोचे समझे खाने पर टूट पड़ा। उसने पेट भर के रसगुल्ले, गुलाब जामुन, आइसक्रीम सब कुछ खाया और महल के ही एक कमरे में जाकर आराम से सो गया। और जब सुबह उसकी नींद खुली, वो महल के बाहर आया। तब उसने देखा कि महल के बाहर एक बहुत बड़ा बाग है, जहाँ बड़े बड़े सफेद गुलाब के फूल हैं। उसने सोचा कि वो अपनी बाकी बेटियों के लिए तो कुछ नहीं ले जा पा रहा है, तो क्यों ना सबसे छोटी बेटी के लिए सफेद गुलाब का फूल ले जाए। ये सोचकर वो जैसे ही गुलाब तोड़ने के लिए बाग में घुसा, उसे जोर से एक आवाज सुनाई दी, ठहरो। वो जैसे ही पलटा, उसने देखा।
क्या देखा नानी?
उसने देखा कि उसके सामने एक 10 फीट लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है, जिसके पूरे शरीर पर काले लंबे बाल लगे हुए हैं। उस आदमी के हाथी जैसे 2 बड़े-बड़े दांत भी थे। उस हैवान ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में घुसने की? पहले तो तुम मेरा खाना खा गए, मेरे बिस्तर पर सोए और अब मेरे बाग से खूबसूरत गुलाब तोड़ रहे हो। उस हैवान का गुस्सा देख सौदागर बहुत डर गया। उसके माथे पर से पसीना टपकने लगा। ऐसी डरी हुई हालत में उसने हैवान को सारी बातें बताई कि किस तरह उसका जहाज वापस नहीं लौटा और किस तरह वो अपनी चारों बेटी की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता, सिवाय उसकी सबसे छोटी बेटी हुस्न बानो की।
फिर उस हैवान ने क्या किया नानी?
सौदागर की दुख भरी कहानी सुनकर उस हैवान का गुस्सा शांत हो गया और उसने सौदागर से कहा, तुम्हारी बेटियों को मन चाहा तोहफा मैं दूंगा, पर तुम्हें अपनी चारों बेटियों में से किसी एक को मेरी सेवा करने के लिए मेरे महल में भेजना होगा, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पास 4 दिन का समय है अपना फैसला लेने के लिए। पहले दिन तुम्हारे कमरे का आईना जो दीवार पर लगा हुआ है वो गिरकर टूट जाएगा। दूसरे दिन तुम जिस कमरे में सो रहे होगे उसकी छत टूटकर गिर जाएगी। तीसरे दिन तुम जिस बिस्तर पर सो रहे होगे वो टूट जाएगा और तुम जमीन पर गिर जाओगे। और चौथे दिन शाम होने से पहले मैं तुम्हें वहीं आकर मार डालूंगा। सौदागर से ये बात कहने के बाद उस हैवान ने सौदागर को अपनी बेटी के मनपसंद तोहफे दिए और उसे वहां से जाने को कहा। घर लौटने के बाद सौदागर की सभी बेटियां अपने अपने तोहफे लेकर चली गई, मगर हुस्न बानो अपने पिता के चेहरे की परेशानी समझ गई थी। उसके लाख पूछने के बाद भी सौदागर ने उसे कुछ नहीं बताया। ऐसे ही दिन बीतते गए और वो सब होता जा रहा था जो उस हैवान ने कहा था। पहले दिन सौदागर के कमरे का कांच गिरकर टूट गया, दूसरे दिन सौदागर के घर की छत टूट गई और तीसरे दिन उसका बिस्तर टूट गया। ये सब होता देख वो बहुत डर गया और उसने अपनी सभी बेटियों को उस डरावने आदमी की बातें बता दी। और फिर पता है क्या हुआ? उसकी उम्मीद के ठीक उलट उसकी तीनों बेटियों ने उस डरावने आदमी के वहां जाने से मना कर दिया, मगर उसकी जो छोटी बेटी थी हुस्न बानो वो तैयार हो गई। हुस्न बानो के लिए अपने अब्बा की सलामती से बढ़कर कुछ नहीं था। और अपने अब्बा की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, और उसने वैसा ही किया। वो उसी रात उस हैवान के वहाँ चली गई।
नानी, उसने बानो कितनी अच्छी लड़की है ना?
हाँ बच्चों, वो अपना घर छोड़कर उस हैवान के साथ रहने लगी। कुछ दिन वहाँ काम करने के बाद वो हैवान उसे पसंद करने लगा, और फिर वो हुस्न बानो को कोई काम नहीं करने देता था। बहुत ही अच्छे से रखने लगा था वो हुस्न बानो को। जब यहाँ सब ठीक होने लगा, तभी हुस्न बानो को पता चला कि उसके अब्बा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। ये सुन हैवान डर गया कि अब हुस्न बानो उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चली जाएगी। हुस्न बानो ने उसे वादा किया कि वो जल्द ही वापस लौट आएगी, जिस पर हैवान ने उसे जादुई अंगूठी दी, जिससे वो पल भर में कहीं भी जा सकती थी, और कहा कि अगर तुम 7 दिन में वापस नहीं लौट कर आई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हुस्न बानो ने उससे वादा किया कि वो 7 दिन में लौट आएगी, और फिर वो जादू की अंगूठी की मदद से पल भर में अपने अब्बा के पास पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद उसने अपने अब्बा की बहुत सेवा की, और देखते ही देखते उसके अब्बा ठीक हो गए। मगर अपनी अब्बा की सेवा में हुस्न बानो ये भूल गई कि उसने हैवान से 7 दिन में लौटने का वादा किया था, और उसे अब्बा की सेवा करते करते 15 दिन हो गए थे। जैसे ही ये ख्याल उसके मन में आया, वो जादुई अंगूठी से उस हैवान के महल में पहुंच गई, और उसने देखा कि वो आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा है। हुस्न बानो जोर जोर से रोने लगी। वो बार बार उससे माफी मांग रही थी और जोर जोर से रो रही थी। रोते हुए हुस्न बानो का एक एक आंसू उस हैवान पर गिर गया। और फिर क्या हुआ जानते हो?
क्या हुआ नानी?
वो हैवान एक बहुत खूबसूरत शहजादा बन गया और जिंदा हो गया। हुस्न बानो ये देखकर दंग रह गई। उसके पूछने पर उस शहजादे ने उसे बताया कि एक चुड़ैल ने उसे शराब देकर एक डरावना आदमी बना दिया था, और कहा था कि जब तक कोई मुझे प्यार नहीं करेगा तब तक मैं ऐसा ही हैवान बना रहूंगा। मगर जैसे ही तुम्हारा आंसू मेरे ऊपर गिरा, उस चुड़ैल का जादू खत्म हो गया और मैं अपने असली रूप में आ गया। और इस तरह हुस्न बानो उस शहजादे के साथ हंसी खुशी रहने लगी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सबक मिला?
क्या नानी?
वो ये कि प्यार में बहुत ताकत होती है। अगर हम किसी भी बुरे इंसान से अच्छे से पेश आते हैं तो वो हमारे साथ भी वैसा ही रहेगा। अब जाओ, जल्दी जल्दी अपना होमवर्क कंप्लीट करो।
बाय बाय नानी।
ये है।